पृष्ठ संख्या 173, ज्ञानात्मक संवेदना से उपजी कविताएं। पूरन चंद्र जोशी ब्रैकेट, जिन्हें प्यार से उनके मित्र पीसी जोशी कहते हैं ब्रैकेट बंद, का काव्य संग्रह इत्यादि जन इसी वर्ष प्रकाशित हुआ। अब तक पीसी जोशी की ख्याति एक मूलगामी समाज, संस्कृति और साहित्य के चिंतक के रूप में रही है। यह सुखद आश्चर्य की बात है कि जीवन के चौथे पन में अब तक की विवेक यात्रा से अर्जित ज्ञान से उपजी संवेदना कविता में बेचैन आत्मा की पुकार की तरह प्रकट हुई है। जोशी जी के इस संग्रह की कविताएं गहन विचारशीलता और विक्षुब्ध संवेदना के संयोग की उपज है। मानव जीवन में ज्ञान और संवेदना के बीच द्वंद्वात्मक संबंध निरंतर गतिमान होता रहता है। ज्ञान में संवेदना पैदा होती है और संवेदना ज्ञान का विस्तार करती है। संभवतः इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखकर मुक्तिबोध ने ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान की बात की है। पीसी जोशी ने अपनी ज्ञानात्मक संवेदना के निर्माण और विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए इस काव्य संग्रह की भूमिका में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा, मेरे युवा काल से आरंभ हुई मेरी जनजीवन की सच्चाई की खोज जो व्यक्तिगत स्तर पर शुरू हुई थी, वह बाद में करीब 6 वर्ष 1957 से 1963 पहले दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के ग्राम अध्ययन प्रोजेक्ट दल के सदस्य के रूप में और फिर करीब 1.5 वर्ष 1982 से 83 दूरदर्शन प्रोग्राम प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ भारत के मुख्य शहरों में साधारण जन के बीच फील्ड वर्क और फील्ड निरीक्षण का सामूहिक प्रयास बन गई। कुछ अरसे बाद विशाल ग्रामीण भारत के इत्यादि जन को करीब 4 वर्ष तक 1989 से 91 गहराई और विस्तार में जानने का मुझे ऐसा मौका मिला जो मेरे समस्त सक्रिय जीवन की सबसे महत् उपलब्धि साबित हुआ, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसी प्रकार से जोशी जी को भारत के विभिन्न प्रदेशों में जनजीवन के संपर्क में आने और समाज के हाशिए पर जीने मरने के लिए मजबूत इत्यादि जनों की अपेक्षा, अपमान, पीड़ा और यातना को ठीक से जानने समझने का मौका मिला। उस ज्ञान ने उनकी संवेदना को इतना विकल बनाया कि वह कविता में वैसी ही फूट पड़ी जैसे क्रोच वध के साक्षी वाल्मीकि की विक्षुब्ध संवेदना कविता में व्यक्त हुई। ऐसी पृष्ठ संख्या 174 स्थितियों में कविता के विस्फोट को ध्यान में रखकर ही कविता को मनुष्यता की मातृभाषा कहा गया है। स्वयं जोशी जी ने अपनी इन कविताओं की रचना प्रक्रिया के बारे में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा, अधिकांश कविताएं ग्रामीण जगत के कठोर और भयावह यथार्थ से जूझते इत्यादि जनों से जमीनी स्तर पर आमने सामने के ट्रॉमा से उपजी रचनाएं हैं। विकास ब्रैकेट में या अपविकास ब्रैकेट बंद का अमानुष चेहरा महज एक बुद्धिजीवी के दिमाग से उपजी अवधारणा नहीं है, यह इत्यादि जनों की वास्तविक जीवन स्थिति है। इसी सच्चाई पर ये रचनाएं प्रकाश डालती हैं, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस संग्रह का नाम जितना आकर्षक है उतना ही आश्चर्यजनक भी। कवि को यह एहसास है कि पाठकों को शीर्षक समझने में शायद कठिनाई होगी, इसीलिए उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि इत्यादि जन कौन है। सबसे पहले कवि ने रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक रशियार चिट्ठी का हवाला दिया है। रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक गद्य में है। उसका हिंदी कविता में रूपांतर काव्य संग्रह के आरंभ में दिया गया है। पड़े हुए अज्ञ अचेतन और अनाम बिताते जीवन भार ढोने वाले मार खाने वाले पशुओं की भांति सदियों से ढो रहे ये सर पर सभ्यता का बृहद दीपदान जिस पे पाते रहे अन्य सभी सदा प्रकाश किंतु स्वयं श्रमिक जन उनको कभी ना मिला प्रकाश होते थे उनके मुख ही सदा कलुषित कुरूप दीपदान से गिरती उन पर तेल की धार। मुक्तिबोध की तार सप्तक में संकलित एक कविता का यह अंश दिया गया है। पृष्ठ संख्या 175। सुलगाता धीरे से आग जिसके प्रकाश में तंबियाए चेहरे पर आप संवेदित ज्ञान की कांपती ही उठती है भाप चुपचाप। सच्चा है जहाँ असंतोष, मेरा वहाँ परितोष। मुक्तिबोध के काव्यांश से यह जाहिर होता है कि इत्यादि जन हिंदी कविता की परंपरा में पहले से मौजूद है। स्वयं कवि ने अपनी एक कविता में यह स्पष्ट किया है कि इत्यादि जन कौन है। जो रह गई अनकही और अनलिखी, विशेषकर हमारे विभाजित समाज में उपेक्षित बृहत जन समुदाय की, जिनको शिष्ट समाज समझता आया है समाज के बाहर, यानी इत्यादि। इत्यादि ही मेरी कविता के विषय हैं, इत्यादि ही मेरी कथा के महानायक हैं, क्योंकि इत्यादि की कथा अभी अनकही है। महासागर की गहराइयां हैं उनकी कथा की, जिनकी थाह ना पा सकेंगे अनेक महाकवि भी। इस संग्रह की कविताओं की एक विशेषता यह है कि ये कविताएं केवल हिंदी क्षेत्र के इत्यादि जनों की जिंदगी की दारुण दशाओं के चित्रण तक सीमित नहीं है। इसमें बंगाल, बिहार के साथ दक्षिण भारत के इत्यादि जनों की व्यथा कथा है। इस तरह यह अखिल भारतीय कविता है। कवि दृष्टि की यह व्यापकता नागार्जुन को छोड़कर अन्यत्र दुर्लभ है। अब आप एक कविता में बंगाल के इत्यादि जनों को देखिए। इस कविता का शीर्षक ही है इत्यादि जन। कविता के एक अंश को कवि के शब्दों में पढ़िए। आए हैं हम बंगाल के, पृष्ठ संख्या 176। इस घनी आबादी वाले गांव में हाल जानने गांव का, गांव के गरीबों का। उसके बाद कवि पूछता है गांव के मुखिया से, कितने लोग बसे हैं इस ग्राम में। फिर पूछते हैं, उधर नजर डालकर जिधर गरीबों की बस्ती है उधर तो अनेक लोग नजर आते हैं। अब गरीबों के बारे में अभिजनों की राय देखिए। आप उन इत्यादि जनों की बात कर रहे हैं, वो तो अनेक हैं, पशुओं, कीड़े मकोड़ों की तरह, उनकी कोई गिनती नहीं। कविता के अंत में यह है कवि प्रतिक्रिया। सुनकर चकित हैं हम सब गांव का, जिनके श्रम उद्यम सेवा से चलता है सब काम, वही हो गए एटसेटराज, यानी इत्यादि जन। और जो परजीवी हैं एकदम इत्यादि जनों के श्रम उद्यम सेवा पर आश्रित, वह हो गए भद्रजन। अब दक्षिण भारत के एक गांव का वास्तविक चित्र और उसके सच को व्यक्त करती एक कविता को पढ़िए, जिसका शीर्षक है अग्रहराम और शेरी। आया हूँ तंजोर के इस सुदूरवर्ती गांव में, जानने असलियत गांव की, गांव के गरीबों की, लेकिन यहाँ पहुँचते ही कैद हो गया हूँ मैं अग्रहराम की। पृष्ठ संख्या 177। सीमाओं के ही अंदर बनकर सवर्ण अभिजात समाज का विशिष्ट अतिथि। क्या है अग्रहराम? अग्रहराम उच्च वर्ग और उच्च वर्ग के लोगों का निवास स्थल है और चेरी में रहते हैं मेहनतकश लोग। अब यह देखिए कि दोनों के बीच संबंध क्या है। चेरी में अग्रहराम वासियों का निषिद्ध है प्रवेश। कहते हैं अग्रहराम से कभी कोई गया नहीं चेरी में, और गया तो प्रताड़ित और दंडित हुआ, क्योंकि यही है नियम ग्राम समाज का, यही है सदियों की परंपरा। इस कविता से स्पष्ट है कि भेदभाव ही अस्थायी भाव है भारतीय गांव समाज की संरचना, परंपरा और संस्कृति का। यह भेदभाव जितना पुराना है उतना ही अस्थायी भी। यह गौतम बुद्ध के समय में था और आज भी है 21वीं सदी में। इस संग्रह की एक और कविता पढ़िए जो बिहार पर है। उसका शीर्षक है यह बिहार है। इसमें एक ओर बिहार का गौरवशाली अतीत है तो दूसरी ओर दुर्गति का शिकार वर्तमान। दोनों के परस्पर विरोधी रूप को कवि ने आमने सामने रखा है, जिससे गुजरते हुए हृदय द्रावक विद्रूपता का बोध होता है। कवि के शब्दों में एक विहार था बोध गया बोध वृक्ष, पाटलिपुत्र नालंदा का बिहार। दूसरा है आज का बिहार, जहाँ से निकलता है अज्ञान, अंधविश्वास, हिंसा का जो तमस, उसकी काली खौफनाक छाया आतंकित करती है सारे देश को। पृष्ठ संख्या 178। कवि ने वर्तमान बिहार की दुर्दशा के कारणों की पहचान करते हुए लिखा है, 1857 की पराजय के बाद से ही देशी विदेशी शासकों, सत्ताकांक्षी वर्गों के गठजोड़ ने लूटा है बिहार को और रक्त चूसा है बिहार का। कवि ने यह भी पहचाना है कि बिहार में पराजय और पीड़ा का अंधकार ही नहीं है, वहाँ जनमुक्ति के संघर्ष की आशा का प्रकाश भी है। स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ था चंपारण से, आज भी देश को खोजना है एक नया चंपारण। बिहार ही आज भी जन के मुक्ति संग्राम की नई प्रयोगशाला है। बिहार के बारे में ऐसी समग्रतावादी दृष्टि न भावुक कवियों की कविताओं में मिलती है और न कलावादी कवियों की कविताओं में। पीसी जोशी एक प्रख्यात बुद्धिजीवी हैं, वे अनेक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस तरह काम करते हुए वे उच्च संस्थानों के बुद्धिजीवियों की कथनी और करनी के अंतर को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने एक कविता में ऐसे बुद्धिजीवियों के आचरण की सभ्यता की विडंबनाओं को पहचाना और व्यक्त किया है। कविता का शीर्षक है जरूरत बनाम हैसियत। कवि ने लिखा है, कैसी विडंबना है इन संस्थानों के दुनिया में नाम कमाए हुए अध्यक्ष महोदय और शोध विशेषज्ञ बनाते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम। पृष्ठ संख्या 179। सारे देश के लिए देश भर में गरीबी हटाओ के लक्ष्य को हासिल करने के विकल्पों पर होती है जोरदार बहस। देश भर में आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के विकल्प। कवि को लगता है कि घोषित रूप से ऐसे संस्थानों के बुद्धिजीवी समाजवाद और लोकतंत्र को समर्पित हैं, लेकिन उसको दुख है कि संस्थान के भीतर सिद्धांत और व्यवहार की चौड़ी खाई हमेशा बनी रहती है। वह कहता है, कभी किसी को सूझा नहीं कि इस सब की शुरुआत की जाए, अपने संस्थान के अंदर से सर्वप्रथम मिटाया जाए यहीं पर हैसियत और जरूरत के बीच की शर्मनाक दूरी को। इस संग्रह में एक कविता संस्कृति के इतिहास की उस विडंबना पर है जिसको ध्यान में रखकर वाल्टर बेंजामिन ने लिखा था कि सभ्यता के दस्तावेज बर्बरता के भी दस्तावेज होते हैं। वह कविता है ए शिल्पी हैं। कविता का आरंभ इस तरह होता है, ए शिल्पी हैं, इतिहास गवाह है, इन्होंने ही बनाया ताजमहल, इन्होंने ही बनाए दुर्भेद्य किले और आलीशान महल, इन्होंने ही बनाया कोणार्क और असंख्य मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और गुरुद्वारे, लेकिन इनको बनाने वाले शिल्पी समा गए इतिहास के गर्भ में। पृष्ठ संख्या 180। बिना नाम के, बिना सम्मान के, बिना किसी के उनकी स्मृति में आंसू बहाए। संस्कृति के इन निर्माताओं को पुरस्कार में क्या मिला? कवि के शब्दों में, किसी की आंखें फोड़ दी गईं, किसी के हाथ काट दिए गए ताकि वह ऐसी इमारतें बना ना सकें दोबारा, लेकिन जो जिंदा भी रहे सही साबुत, वह भी रहे गुमनाम। इस कविता के अंत में कवि की इतिहास संबंधी दूरगामी दृष्टि इन शब्दों में व्यक्त हुई है। उसे ही कहते हैं इतिहास जो लिखा जाता है समर्थों के हित में, समर्थों के हक में। इस संग्रह में शिल्पियों के साथ ही मजदूरों, किसानों और अन्य आमजनों की जिंदगी की तबाहियों, दुश्वारियों और यातनाओं पर अनेक कविताएं हैं। इस संग्रह की कई कविताओं में वर्तमान भारत के शासन पर और उसकी राजनीति के छल छदम की खरी आलोचना है और उस सब के सामने आम आदमी की मजबूरी और बेबसी की मार्मिक व्यंजना भी है। इस संग्रह में एक कविता है, मैं आम आदमी हूँ। यह कविता भारत के आम आदमी की दृष्टि, समझ, उम्मीद और आकांक्षा को जाहिर करती है। कविता का आरंभ यह है, मैं आम आदमी हूँ, भारत का आम नागरिक, निपट, अनपढ़ और गंवार। मैं सबकी सुनता हूँ लेकिन मेरी बात सुनता नहीं कोई। दूसरों की आवाज़ें मुझ तक पहुँचाने वाले नए नए यंत्र हुए हैं। पृष्ठ संख्या 181। इजाद, लेकिन मेरी बात ऊपर पहुँचाने वाला कोई यंत्र हुआ नहीं अभी इजाद। अब भारत के अनेक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री यह मानने, लिखने और कहने लगे हैं कि आज के भारत में दो भारत हैं, एक अमीरों का भारत और दूसरा गरीबों का भारत। पहले भारत के निवासी भूमंडलीकरण के रथ पर सवार होकर विश्व नागरिक और उत्तर आधुनिक बन रहे हैं, जबकि दूसरे भारत के इत्यादि जन मध्ययुगीनता और आधुनिकता के बीच में फंसकर कराह रहे हैं। इस संग्रह की एक कविता है पहला भारत। इसमें पहले भारत के लोगों के बारे में कहा गया है। यह पहला भारत भोग लोलुप नौ धनाढ्य का भारत। ये है नव धनाढ्य आजाद भारत के जो यहाँ रह कर भी मन से हैं। NRI। कवि यह जानता है और कहता है कि भूमंडलीकरण का एक अर्थ है अमेरिकीकरण, जिसका परिणाम है धनपतियों की लूट और शक्ति का विस्तार। इस बात को कवि ने पहला भारत कविता में इस तरह व्यक्त किया है, जब पूरब के हर देश में रचना होगी एक छोटे मोटे अमेरिका की, जिसकी रक्षा करेंगे दरिद्र बहुजन के आक्रोश के विस्फोट से, सुरक्षा के सशक्त अर्धसैनिक राजकीय दल बल या भूमिपतियों और नए धनपतियों के प्राइवेट माफिया और भूमि सेनाएं। भारत का लोकतंत्र, उसकी सरकार, सरकार की राजनीति और अर्थनीति का खेल आंकड़ों के खेल और चमत्कार के सहारे चल रहा है। अभी कुछ समय पहले इस बात पर बहस हुई थी कि क्या 26 रुपए की आमदनी वाला गांव का आदमी गरीबी रेखा के ऊपर है और 32 रुपया कमाने वाला शहर का आदमी भी। यह गरीबी रेखा पृष्ठ संख्या 182 भी अजीब जादुई रेखा है, जो सरकारी अर्थशास्त्रियों के आंकड़ों के चमत्कार से ऊपर नीचे होती रहती है। पीसी जोशी इस आंकड़े के खेल और चमत्कार को समझते हैं, इसलिए उनके इस संग्रह में दो कविताएं आंकड़ों के चमत्कार पर हैं। एक है आंकड़े और आदमी तथा दूसरी है आंकड़ों का चमत्कार। पहली कविता के अंत में कवि ने लिखा है, आंकड़े ही आंकड़े हैं जीते जागते मंजूरों के, दुख दर्द संघर्ष नहीं आंकड़ों में खो गई, कठोर जिंदगी से जूझते आदमी औरतों की त्रासदी। दूसरी कविता अधिक तीखी और आक्रामक है तथा व्यंग्यात्मक भी। उसमें सरकारी आंकड़ों का पूरा चरित्र है और उनकी चाल चलन का ब्यौरा भी। कवि सरकारी आंकड़ों को मिथक कहता है और चमत्कारी भी। कवि ने लिखा है, आंकड़ों के औसत में विपन्न भी लगते कम विपन्न, आंकड़े के औसत में संपन्न भी लगते कम संपन्न, आंकड़ों के औसत में अमीर और गरीब की दरार एकदम अदृश्य हुई। कैसा चमत्कार, आंकड़ों का चमत्कार। इस लेख के आरंभ में जिस गहन विचारशीलता की बात की गई है, उसका एक पहलू है अपने समय और समाज के प्रत्येक विपक्ष की निर्भय आलोचना और दूसरा पहलू है स्वपक्ष की निर्द्वंद आलोचना। पहले पहलू पर इस लेख में बात हो चुकी है। दूसरे पहलू को व्यक्त करने वाली दो कविताएं इस संग्रह में हैं। एक कविता है आदरणीय पंत जी, जो सुमित्रानंद पंत की काव्य संवेदना पर है। इस कविता के पूर्वार्ध में पंत जी के प्रकृति प्रेम की प्रशंसा है, लेकिन उत्तरार्ध में उनकी कवि दृष्टि की सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख है तथा उसकी बेबाक आलोचना भी। कवि कहता है, उच्च ब्राह्मण कुल में संपन्न शिक्षित अभिजात परिवार में लेकर जन्म आप और आपकी तरह पुराने और नए ब्राह्मणों की कई पीढ़ियां क्यों ना देख सकें प्रकृति। पृष्ठ संख्या 183 के इस अपार वैभव के बीच निरक्षर दरिद्र अभावग्रस्त अर्ध क्षुधित अर्धनग्न पशुवत जीवन यापन करती समाज की निम्न श्रेणी को, जिसे भद्र समाज कहता आया शूद्र कुर्माचली, भद्र समाज कहता आया डूम और उसके निवास स्थान को डुमौड़। जोशी जी को दुख इस बात का है कि कवि पंत जन जागरण के अग्रदूत क्यों नहीं बन सके। आत्मालोचन की दूसरी कविता है अनाम की मुक्ति एक लंबी यात्रा। एक कविता मुख्यतः कवि और चिंतक रविंद्रनाथ ठाकुर पर है, लेकिन उसमें शोबियत समाज के विघटन और समाजवाद के अंत के कारणों की पड़ताल भी है। कविता में सोवियत संघ के समाजवाद के पतन के दो कारण बताए गए हैं। पहला है मनुष्य की स्वायत्तता का नाकार और दूसरा है असहमति का दमन। ये दोनों कारण वास्तविक हैं जिन्हें कवि ने पहचाना है। इस संग्रह की कविताओं में भारतीय समाज में मौजूद आतंककारी सामंती अवशेषों की उपस्थिति और पूंजीवाद के नए दौर की लूट, झूठ और दमन की व्यवस्थाओं का जो चित्रण है वह निराशा पैदा करने वाला लगता है। लेकिन कवि भारतीय समाज के भविष्य के बारे में निराश नहीं है, वह यह भी देख रहा है कि इस व्याधिग्रस्त समाज में अंदर ही अंदर प्रतिक्षण एक महापरिवर्तन के कारकों का हो रहा गठन, कल के भद्र समाज के अंदर ही अंदर एक प्रबुद्ध वर्ग का सृजन, पुरानी शोषक व्यवस्था से त्रस्त जनमन में उद्वेलन।